ओम शांति। जैन धर्म के संस्थापक महावीर, उनके जीवन में एक घटना का वर्णन है। एक राजा जो कि महावीर बनने से पहले वर्धमान महावीर जो थे उनका मित्र था। महावीर ने तो सन्यास मार्ग ले लिया, तपस्वी बन गए, परंतु वो राजा संसार के सुखों में लिप्त था और उसे पता चला कि मेरा मित्र एक बहुत बड़ा योगी बन गया है। तो वो उससे मिलने आते हैं और जब मिलने आते हैं तो आश्रम के बाहर ही एक दूसरा व्यक्ति होता है, एक पैर पर खड़ा है, तपस्या कर रहा है। ये राजा उसको एकदम पहचान लेते हैं कि ये तो मेरा मित्र है जो कि पहले राजा था और अब इसने संसार छोड़कर संन्यास लेकर महावीर के साथ इस आश्रम में रह रहा है। तो उसको लगता है एक मेरा मित्र योगी बन गया और दूसरे ने राज्य छोड़ दिया और मैं क्या कर रहा हूं। दुख हुआ उसको, वो अंदर जाता है, महावीर से मिलता है और एक प्रश्न पूछता है, ये जो बाहर राजा है जो कि पहले राजा थे और अब यहां पर सब कुछ छोड़कर तपस्या कर रहे हैं, तो इस राजा के मन में एक प्रश्न आता है। वो पूछते हैं कि यदि ये जो व्यक्ति बाहर तपस्या कर रहा है, भूतपूर्व राजा, अगर वो इसी समय शरीर छोड़ दे तो इसकी क्या गति होगी। तो महावीर कहते हैं जो बाहर तपस्या कर रहा है इस समय एक पैर पर खड़ा होकर ध्यान मग्न है, अगर ये इसी समय शरीर छोड़ दे तो सीधा नरक में जाएगा। तो राजा को आश्चर्य होता है, राजा प्रसन्नजीत, प्रसन्नसेन ऐसे कुछ नाम होता है, वो पूछता है कैसे, वो तो संसार छोड़कर आपकी शरण में आया है। तो वो नरक में क्यों जाएगा जब वो तपस्या कर रहे हैं। तो महावीर कहते हैं अभी आपके आने से पहले ही थोड़ी देर पहले यहां से दो सिपाही गए थे उसी राजा के राज्य के, और जो आपस में बात कर रहे थे एक सिपाही ने कहा था कि कैसा मूर्ख राजा है, सब कुछ छोड़कर इधर महावीर के पास आ गया और उसके जो दूसरे साथी है वो उसके राज्य पर कब्जा कर लिए हैं। तो जैसे ही तपस्या मग्न राजा ने यह सुना उसके अंदर क्रोध जाग गया। बाहर से तपस्या कर रहा था परंतु जैसे ही यह सुना कि मेरे राज्य में क्या क्या हो रहा है, वो दो सिपाही आपस में बात कर रहे थे, दूसरे सिपाही ने कहा कि ऐसा मूर्ख राजा हमने कभी देखा नहीं, उसके सारे मंत्री उसका राजकोष लूट रहे हैं, और जैसे ही ये बात कहती है कहता है वो सैनिक, इस राजा की जैसे आदत होती है तलवार निकालने की तो वो वैसे ही तलवार निकालता है मन में, अदृश्य तलवार, और वैसा ही क्रोध आ जाता है जो उसका स्वभाव था पहले का। इसलिए ये राजा जब पूछता है महावीर से अगर उसने अभी अभी शरीर छोड़ा तो उसकी क्या स्थिति होगी, क्या गति होगी। तो महावीर कहते हैं क्योंकि ये घटना घटी और उसके मन में युद्ध चालू हो गया था, संसार तो वो छोड़कर आ गया था, राज्य छोड़कर आ गया था, परंतु अब भी कामनाएं सारी की सारी थी, वही क्रोध था, वही हिंसा थी, वही आक्रामक स्वभाव था। फिर थोड़ी देर के बाद महावीर कहते हैं कि अगर अभी उसने शरीर छोड़ा तो वो स्वर्ग में जाएगा। तो वो जो राजा आया हुआ होता है वो पूछते हैं ऐसे आप अभी क्यों कह रहे हो। महावीर कहते हैं क्योंकि अभी वो जो बाहर तपस्या कर रहा है उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, जो चीज छोड़ दी वो छोड़ दी, अभी उससे क्या लेना देना। और वो अब पश्चाताप कर रहा है। बाहर की मुद्रा सेम है, उसी आसन पर वो स्थित है, पर मन के आसन बदल रहे हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले क्रोध था, हिंसा थी, आक्रामक स्वभाव था, और अभी अभी पश्चाताप, अभी अभी वैराग, अभी अभी सोचने लगा कि मुझे क्या लेना देना है, मैं तो वो संसार छोड़कर आया। मन की स्थिति, मन का आसन बदल गया। इसलिए महावीर कहते अगर अभी उसने शरीर छोड़ा तो वो स्वर्ग में जाएगा। मन किस आसन में स्थित है? एक है शरीर का आसन। अभी अभी योग दिवस मनाया गया सारे विश्व भर में, जिसमें कई प्रकार के आसन सिखाए गए। दो राजयोग है, एक है पतंजलि का राजयोग और एक है भगवान का सिखाया हुआ राजयोग। उस राजयोग के आठ अंग है, अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। पतंजलि का कहना था कि उस परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरी नहीं है कि भगवान चाहिए, ऑप्शनल। मदद लेनी है भगवान की तो लो, नहीं ली तो भी चलेगा, लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। छह दर्शन में से भारत के एक दर्शन योग है पतंजलि का, न्याय, वैशेषिक, मीमांसिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इस तरह षडशास्त्र, षड दर्शन। तो एक राजयोग वो है, और एक दूसरा राजयोग है जो संगम युग पर भगवान ने आकर हमको सिखाया। जैसे उस राजयोग में बहुत सारे आसन है, कुछ सहज है, कुछ कठिन है, वैसे इस राजयोग में भी कुछ आसन है। तो आज हम परमात्म प्रदत्त यह जो राजयोग है उसके 16 आसन कौन से हैं, इसकी चर्चा करेंगे। कौन से हो सकते हैं, इस पर हमने भी कभी बोला नहीं, ये कल परसों ही विचार हमारे मन में आया, और कल रात में जब इधर आ रहे थे तो इसके विषय में सोचा, क्या हो सकते हैं, कोई भी 16 कौन से आसन हो सकते हैं? अभी अभी चिंतन करके बताओ। समान का आसन, और साक्षी दृष्टा का आसन, और कमल आसन, राइट, और दिल तख्त का आसन, और कौन सा, भ्रुकुटी का आसन, और बोल दिया समान, और तो ऐसे हम 16 आसन देखेंगे। सबसे पहले ज्ञानासन, ज्ञान के आसन में स्थित रहना, ज्ञान की स्थिति में स्थित रहना, ज्ञान के स्वरूप में स्थित रहना, ज्ञानी तू आत्मा स्वरूप में स्थित रहना। कुछ दिन पहले स्लोगन था ज्ञानी तू आत्मा, अर्थात क्या, एक हफ्ते के अंदर था स्लोगन, मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, हानि लाभ, सब में जो समान है। ज्ञान अर्थात नम्रता, वह ज्ञान जो अहंकार को लाए वह अंधकार है, जैसे सुबह बताया। स्वयं को ज्ञान के आसन में स्थित करना अर्थात, जैसे सुबह भी बताया, ज्ञान का गहन चिंतन करना। कोई भी एक पॉइंट मुरली से ले लेना और उसका विस्तार करना। जैसे आज की मुरली में एक जगह आया शंकर डांस, शंकर डांस। बाबा डांस कब करते हैं? जिसका यादगार भक्ति मार्ग में है, जब बच्चे गीत गाते हैं, जब बच्चे नाचते हैं तो भगवान भी नाचता है। भक्ति मार्ग में शंकर डांस बताया, यहां शिव डांस। भगवान कब नाचता है, चिंतन का विषय। ये है ज्ञानासन, ज्ञान के आसन में स्थित हो जाना। एक टॉपिक निकाल लिया हमने यहां से और उसका चिंतन। दूसरा टॉपिक चैतन्य दिलवाड़ा। कौन है चैतन्य दिलवाड़ा, कैसा होता है ये चैतन्य दिलवाड़ा, इसके विषय में सोचना। मधुबन के लिए बाबा ने कहा है, त्रिमूर्ति तिलक का वर्णन आज की मुरली में किया है। कौन से तिलक है वो तीनों, कौन से तिलक है, तीन प्रकार के तिलक बताए आज। हाँ, स्वराज्य का तिलक पहला, दूसरा सर्विसेबल का तिलक, तीसरा स्नेही और सहयोगी पने का तिलक। तीन प्रकार के तिलक, यह है ज्ञान का चिंतन। इस आसन में स्थित होना, छोड़ नहीं देना इसको। सुबह अमृत वेले के बाद क्लास में ये मुरली हमने डिस्कस की थी, 16 बातें इस मुरली की, इस ब्राह्मण परिवार की विशेषताओं के विषय में। कुछ भी नहीं छोड़ना, नए नए टॉपिक्स, पॉइंट्स, चिंतन बिंदु उठाना, जो लिख सके वो लिखना चालू करे। अपनी एक डायरी बनाना है, चिंतन डायरी उसको नाम देंगे, और जिसमें ऊपर एक टॉपिक लिखेंगे और नीचे चिंतन लिखेंगे। जैसे कि टॉपिक लिखा शंकर डांस, भगवान नाचता है, कब नाचता है, क्यों नाचता है, कैसे नाचता है, म्यूजिक कौन सा है, गीत कौन सा है, बाबा का कौन सा गीत है। हमारे बहुत सारे गीत है, बाबा का तो एक ही गीत है, ऑल टाइम फेवरेट, वाह बच्चे वाह, बस उसका एक ही गीत है, हमारे ढेर है। तो वो डांस करता है। तो ज्ञान आसन अर्थात ज्ञान के बिंदुओं का चिंतन, ये पहला आसन। दूसरा योगासन। योगासन मतलब वो वाला नहीं, एक पैर इधर और एक पैर उधर, वो वाला नहीं। योगासन अर्थात योग की श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाना, याद की श्रेष्ठ अवस्था में स्थित हो जाना। और निरंतर ये योगासन कैसे होता रहे। आसन अर्थात पोश्चर, आसन अर्थात कोई मुद्रा। यहां मन की मुद्रा और मन का पोश्चर और मन के आसन की हम बात कर रहे हैं। मन उस योग की स्थिति में, धारा में, याद में, रिमेम्ब्रेंस में स्थित हो जाए। और उसका अभ्यास कब करना है, बीच बीच में करना है। ऐसा नहीं कि जैसे हमने एक सिनेरियो दिया था, एक भाई है जिसको कहां है, सेंटर पर बहुत सेवा है। कहां गए वो भाई, सेंटर पर बहुत सेवा है। हाँ, तो ये जो है, जब बहुत सेवाएं हैं, क्या उस सेवा को ही योग बनाया जा सकता है। किसी को ड्राइविंग की सेवा है, क्या उस ड्राइविंग को ही सेवा बनाया जा सकती है। सेवा छोड़कर हमको योग का अच्छा टाइम मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। पर अगर नहीं मिलता है तो सेवा को ही योग बनाना है। ट्रैवलिंग कर रहे हैं, योग। हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा चिंतन हमने यदि कभी किया होगा, वो ट्रैवलिंग के समय किया है। यहां से आबू जाना है, आबू से अहमदाबाद जाना है, यहां से मुंबई जाना है, कहीं पर भी जाना है, चाहे ट्रेन में है, एयर फ्लाइट में है, एयरपोर्ट पर है, वेट कर रहे हैं किसी के लिए, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं बीच में, क्या किया जाए। यह भी एक सीन ले सकते हैं आप बाद में, ट्रैफिक में फंस गए हैं, उधर प्रोग्राम है योग भट्टी, कुमारों की योग भट्टी, और हम ट्रैफिक में है, तो क्या करेंगे, गालियां देंगे सरकार को, पुलिस वाले को, लोगों को, ऐसे बहुत सारे। ये तो अभी जो हमने 15 सीन्स यहां क्रिएट किए थे, ऐसे रोज ढेर सारे सीन हमारे जीवन में आते रहते हैं। बेनिफिट देखना, क्रिएटिविटी देखना, और रेड कम से कम, ब्लैक कम से कम नेगेटिव। फायदे क्या क्या है, कैसे उस सिचुएशन को हम चेंज करें। अभी तो हमने खेल खेल में यहां सब किया, वैसे ही लाइफ सिचुएशंस आएगी, टफ सिचुएशंस। ट्रैफिक में फंस गए हैं, संकल्प करेंगे कि मुझ आत्मा से जितने आसपास लोग हैं सबको सकाश जा रही है। ट्रेन में जा रहे हैं, उस ट्रेन में जितने लोग हैं उनके लिए योग। ट्रेन में बाय रोड जा रहे हैं, जो भी आत्माएं दिख रही है सबको सकाश। और अपनी चिंतन की धारा को बढ़ाना है, योग को भी बढ़ाना है, और कठिन कठिन परिस्थितियों के बीच में योग करना। हमको याद है हम एक सेंटर पर गए थे, गुजरात का ही था, बापूनगर शायद। तो वहां पर ऐसा हुआ, एक टॉपिक था जो हमने दे तो दिया था पर सोचा कुछ नहीं था, क्योंकि दोपहर में था वो, और उसके विषय में क्या करना है वो हम दोपहर में सोचने वाले थे, क्योंकि उधर से निकले तो उधर का सारा कारोबार चालू था, इधर पहुंचते ही सुबह से चालू हो गया, तो वो टॉपिक दोपहर में था। तो वो बहन जी ने अनाउंस किया कि अभी जो दोपहर का टॉपिक था, मुक्त हृदय की बारीक गांठें, इस पर भाई साहब बोलेंगे। तो हमने सोचा था ब्रह्मा बाबा के 10 कदम, इस पर बोलना है। तो उन्होंने तुरंत अनाउंस कर दिया, अब हम क्या करें। गीत बजा बाबा का योग के लिए, और बस हमने बोला अभी क्या करना है पता नहीं। स्ट्रांग योग कि जैसे मैं कनेक्ट हो गया हूं बिल्कुल उस ज्योतिर्बिंदु, उस ज्ञान के सागर के साथ, और उसकी सारा के सारा ज्ञान मुझ आत्मा में बह रहा है। उस 3 मिनट के गीत में ऐसा शक्तिशाली योग का प्रयोग, और फिर वो क्लास हुआ, मुक्त हृदय की बारीक गांठे। तो योग अमृत वेला करना, नुमा शाम करना, रात में करना, अच्छा टाइम मिल गया बहुत अच्छा, पर टाइम नहीं मिलेगा, बहुत बिजी है, ऑफिस में बिजी है, सेवा में बिजी है, सेवा केंद्र में बिजी है, सब लोग योग करने जा रहे हैं और हम बैठे हैं कुछ सेवा करते हैं। कई बार ऐसा ही होता है हॉस्पिटल में, उधर हमारे पास सब लोग बाबा से मिलने नहीं जा सकते, नीचे किसी की ड्यूटी होती है, कई लोग दुखी हो जाते हैं, बाबा नीचे आ रहे और हम ऊपर, सारी दुनिया भगवान को नीचे मिलने जा रही और हमारी यहां ड्यूटी लग गई। ये भी कोई जीवन है, इसलिए आए थे कि यहां, कई तो छोड़ के चले गए। परंतु हर परिस्थिति को योग में रूपांतरित कर देना, और एक बात सबसे महत्वपूर्ण, जब कर्तव्य पुकारे सब छोड़ देना, जब कर्तव्य पुकारे उसके सामने सब कुछ गौन है। दादी का क्लास है, दादी आ रही है, पर हमारी सेवा है, कर्तव्य फर्स्ट, बाकी सब बाद में। इस प्रिंसिपल को संपूर्ण जीवन पर्यंत याद रखना है, इससे परे और कुछ भी नहीं है। तो योगासन, तीसरा है धारणासन। नियम और मर्यादाएं जो नहीं जानते हैं, बहुत सारी यज्ञ में भाई बहनों ने, वरिष्ठ भाई बहनों ने मर्यादाओं पर क्लासेस कराई है। मर्यादाओं की लिस्ट अवेलेबल है, कहीं पर भी मिल जाएगी, उसको बीच बीच में रिवाइज करते जाना और देखते रहना कि इस लिस्ट में ऐसी कौन सी धारणा है जो मैं अब भी नहीं कर रहा हूं। अमृत वेले से लेकर तो रात तक हर चीज के लिए श्रीमत मिली हुई है, इसमें से किसकी कमी है, कौन सी धारणा, कौन सा गुण, कौन सी शक्ति अभी भी मिसिंग है मुझ में, मेरे जीवन में, उस पर फोकस करना। और हो सकता है वो बाजू वाले में है, उसकी मदद लेना। एक भाई ने अनुभव सुनाया था कि एक भाई था जिससे बहुत घृणा थी उसको, पता नहीं उसका कुछ अच्छा नहीं लगता था, उसका सब गलत लगता था। जिससे घृणा होती ना उसका योग अच्छा लगता है, ना उसका ज्ञान, ना उसकी क्लास, ना उसकी सेवा, सब गलत है। और ये जो भाई था वो खुद अमृत वेला नहीं करता था, पर कभी होता था कभी नहीं होता था। तो एक दिन जब उसकी नींद एक बार खुल गई सुबह सुबह 3 बजे और वो जा रहा था मधुबन, ये मधुबन की बात है, मधुबन के आसपास भी बहुत सारी जगह है जहां लोग रहते हैं घरों में, आबू माउंट आबू निवासी। तो उसने देखा वो भाई जा रहा है जिससे उसकी बहुत घृणा है, पैदल, वो भी बारिश में छाता लेकर। तो उसको लगा इस भाई से मैं इतना घृणा करता हूं और देखो उसकी धारणा, चलो वो बाकी कुछ भी अच्छा नहीं है पर अमृत वेला उसका एकदम रेगुलर है, इतनी बारिश, भालू, लाइट नहीं कभी कभी, और फिर भी छाता लेकर जा रहा है, और एक दिन नहीं हर दिन वही टाइम पर जाता है, फिक्स टाइम है जाने का, बिल्कुल 3:30 बजे निकलना, 4:15 बजे तक मधुबन पहुंचना। तो ये जो भाई था दूसरा जिसकी घृणा थी उसके प्रति, एकदम से उसके प्रति प्यार जागृत हो गया, क्योंकि ये धारणा उसमें थी नहीं, क्योंकि इसका तो रोज रोज मिस होता था अमृत वेला, और ये उस जिसकी बाकी चीजें ठीक नहीं थी पर अमृत वेला फिक्स था। तो ऐसी बहुत सी सूक्ष्म धारणाएं जो हमारे आसपास वालों में है और हम में नहीं है, हमें उनसे सीखना है। किसी का बोलना अच्छा है, किसी का चिंतन अच्छा है, किसी को कोई विशेष कला आती है, मैनेजमेंट की कला आती है, एडमिनिस्ट्रेशन की कला आती है, एंकरिंग आता है, कंप्यूटर की स्किल्स आती है, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कैसे करना, उनको कैसे इंप्लीमेंट करना, कैसे बात करना, कम्युनिकेशन स्किल्स, ड्राइविंग, कुछ भी हो सकता है, टाइपिंग, कुछ भी, जो जो सेवा, जो जो हुनर सेवा में काम आए वो हमको सीखना है। एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, अपनी उन्नति अंदर ही अंदर होती रहे, न्यू स्किल्स हर दिन सीखते रहे, नई भाषा सीखना, नई भाषा, हिंदी है, जिसको हिंदी नहीं आती वो पहले तो हिंदी सीखे, अच्छी हिंदी, इंग्लिश और जो भी भाषा है, जिस भाषा में सेवा हो सके। और भाषा सीखना बहुत मेहनत का काम है, नई भाषा में सोचना, नई भाषा में अमृत वेला करना, सीखने के लिए डिस्टर्बेंस होता है कुछ कुछ समय के लिए, पर सीखना है, नई स्किल सीखनी है। तो धारणा तीसरा, चौथा है सेवासन, उधर है शवासन, इधर है सेवासन। सबसे बेस्ट है स्वयं को सेवा में बिजी रखना, कम से कम पाप तो नहीं होंगे, विकर्म तो नहीं होंगे, व्यर्थ तो नहीं चलेगा, कुछ नहीं कर सकते, सेवा में लगे रहो, हार्ड सेवा, दौड़ भाग करने की सेवा। कुछ दिन पहले मुरली में चुस्त टीचर की परिभाषा बाबा ने बताई थी, चुस्त टीचर कौन है, जो 8 से 10 सेंटर संभाले, जो दौड़ती भागती रहे, और नींद का भी था शायद उसमें, कितना घंटा नींद करे, 6 से 6 घंटा नींद करे, था ना कुछ दिन पहले, चुस्त टीचर। तो सेवा एक ऐसी गंगा है जो संगम युग पर बह रही है, हाथ धो लो, नहा लो, पाप धुल जाएंगे सहज, फिर नहीं बहेगी ये गंगा, अब बह रही है, उतर जाओ इस गंगा में, फिर चांस नहीं मिलेगा। कई लोग तो ऐसे है कि योग सेवा ही करते रहते हैं, वो भी अच्छा है, वो कहते हैं हमारा योग तो लगता नहीं, ज्ञान मुरली याद रहती नहीं, अब रहा क्या ऑप्शन, सेवा। ये भी ठीक है, सेवा करते रहो, जो भी गेस्ट आए उनको घुमाओ, भोजन की सेवा करो, मदद करो, परंतु बिजी रहो। तो ये 4 आसन हो गए, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। 5वां वैराग आसन, स्वयं को तीव्र वैराग से भरना है, निरंतर संसार की असारता का चिंतन, निरंतर संसार के दुखों का चिंतन, व्यर्थता का चिंतन करते रहना, क्या है संसार में दुख के अलावा, एक पत्नी अपने पति से निरंतर कहती रहती है कि मेरा भाई जो है ना इतना वैरागी है और सोच रहा है संसार को छोड़ के संन्यास ले ले। 2 साल से रोज कहता है कि मुझे संन्यास लेना है, मुझे संन्यास लेना है, संसार असार है, संसार व्यर्थ है, पर फाइनल उसकी हिम्मत नहीं हो पाती। कहता तो रोज है, साधना करता है, सब करता है। वो अपने पति से कहती है, पत्नी अपने भाई के विषय में, कि मेरा भाई संन्यास लेना चाहता है। तो पति कहते हैं, संन्यास ऐसे थोड़ी लिया जाता है। पत्नी कहती है, फिर कैसे लिया जाता है? वो कहते हैं, ऐसे और बाहर, फिर वापस ही नहीं आता, ऐसे लिया जाता है, अभी के अभी, तुरंत ताबड़तोब, राइट नाउ, इमीडिएटली, कहना नहीं पड़ता है, सीधा एक्शन, आज छोड़ूंगा, कल छोड़ूंगा, परसों छोड़ता हूं। शराबी का था ना एक, ऐसे थोड़ी छूटती है। अभी मधुबन में एक नेपाल से भाई आए थे, अनन्य सेवा करते सेंटर में, उनका अनुभव सुनकर हम हैरान रह गए। ऐसा अनुभव, वो भाई ने अनुभव सुनाया, हम गए थे उधर, तो वो एकमात्र भाई, इतनी सेवा सेंटर का, बहुत सारा वो अकेला ही करता है, तो उसने अनुभव सुनाया, अभी 2.5 साल से ज्ञान में हूं, पहली बात तो ये, 2.5 साल में इतनी अथक सेवा उसकी। फिर उसने बताया, वो ड्रग एडिक्ट था, यहां तक बाल थे उसके, यहां टैटू, यहां टैटू, गैंगस्टर टाइप था वो, उसके पास अफीम, गांजा, चरस, 14 साल से नशा कर रहा था, ट्रैवलिंग, मोटरसाइकिल लिए और चले साधुओं के पास, उनसे अफीम गांजा एक्सचेंज, कभी किधर तो कभी किधर, पड़े रहता था ऐसा। और कैसा वो ज्ञान में आया, अजीब कहानी है उसकी, एक धक से छोड़ दिया। उसने एक एक्सपेरिमेंट बताया, मेरे जेब में वो अफीम, वो गांजा के पैकेट, और वो भी साधारण, और बहुत रईस घराने का है, बहुत अमीर घराने का, सादा घराना नहीं है, प्रतिष्ठित, करोड़पति टाइप। और कैसे उसके मन में अचानक से फिर वो संकल्प आया, और कैसे वो बाबा का बन गया, उसको देखकर तो लगता ही नहीं कि ऐसा भी होगा। फिर बाद में उसने फोटो भेजे अपने, हमने बोला, ये कौन है, एकदम ऐसे पूरा तो कैसे परिवर्तन हो गया। उसने एक्सपेरिमेंट बताया था, 12 दिन तक वो चरस का पैकेट जेब में रखा, और उसने कहते रखा, मैं तुझे लूंगा ही नहीं, पर जेब में ही रखा, और बताता कि मुझे लेना ही नहीं है, पड़ा रहता था कहीं कहीं, दिन रात वो नशे में, बाबा का बन गया। ये तो अभी सुनाया, हम जब वहां गए थे तो हमने देखा, ये कैसा कुमार है, कितना त्यागी, इसको अपने भोजन की चिंता नहीं, कुछ नहीं, दिन रात सेवा, इतना अनन्य भाव। और वो क्या था पहले और क्या बन गया, कैसी दिनचर्या थी, कैसा जीवन था। वो कहता है, मेरा सोने का समय था 6 बजे, रात भर दोस्तों के साथ घूमना फिरना, हर प्रकार का नशा किया, और एक धक से छोड़ दिया। लोगों को नशा छुड़ाने के लिए रिहैब सेंटर में डालना पड़ता है, पुनर्वसन केंद्र में 6-6 महीने रहने के बाद भी निकलकर फिर पीना चालू करते हैं। उसने छोड़ दिया, नो विड्रॉल सिम्टम्स, और वैरागी है, एकदम त्यागी है, बहुत त्यागी है। तो वैराग आसन, संसार की व्यर्थता का चिंतन और वैराग। अगला है त्यागासन, वो हर चीज जो हमारे पुरुषार्थ के बीच आ रही है, छोटी से छोटी होगी उसको छोड़ दो, और छोड़ने के लिए एक ही चीज चाहिए, संकल्प। और ऐसा जब संगठन हो तो छोड़ ही देना बिल्कुल, ऐसे बड़े संगठन में संकल्प करने में शक्ति आ जाती है। अगला है तपस्यासन, तपासन, तप में अपने जीवन को झुलसना है, बिताना है, जैसे सुबह बता रहे थे ना, आग तप जाए तभी वो मोल्ड होगा, तभी उसमें पावर आएगी, ये तीन, त्याग, तपस्या, वैराग। फिर है, किसी ने बताया था कमलासन, कमल समान जीवन, डिटैच्ड। संसार के बीच में सब जगह है परंतु डिटैच। आज सुबह की मुरली, पहले तुम कीचड़ में थे, अभी कीचड़ में कमल हो। पहले दुखों के संसार में थे, अभी सुख के संसार में हो। पहले साधारण आत्मा थे, अभी पुरुषोत्तम हो। तीन बातें आई है मुरली में। ये पहले तुम्हारा संसार था और अब क्या बन गया? कमल समान जीने का अभ्यास, सब करना और डिटैच हो जाना एकदम। अभी भी वो, अभी भी वो, अभी भी वो और अभी भी वो। डिटैचमेंट का पार्ट तो संसार में भी सबने सिखाया है। विवेकानंद ने एक जगह लिखा है, कहा है भाषण में, एट वन मोमेंट यू आर वर्किंग इन द फील्ड, एट अनदर मोमेंट यू आर सर्विंग द लॉस्ट, द लोएस्ट एंड लोवलीएस्ट, एंड अनदर मोमेंट यू आर गोइंग इन द टेम्पल एंड वर्शिपिंग द डेइटी, एंड अनदर मोमेंट यू आर गोइंग इन द जंगल एंड गेटिंग लॉस्ट इन समाधि। अभी अभी किसी गरीब मरीज की सेवा कर रहे हो, अभी अभी मंदिर में पूजा कर रहे हो, अभी अभी कर्म कर रहे हो, और अभी अभी इन सब से डिटैच होके किसी एकांत स्थान में समाधि में डूब जा रहे हो। ये किया, वो किया, वो किया और डिटैच होते गए, फटाफट फटाफट फटाफट। ये काम किया, उससे डिटैच होकर ये काम। फास्ट जितना जो डिटैच हो सकता है वो उतना बड़ा योगी। अभी अभी किचन में सेवा कर रहे, किचन की सेवा पूरी हुई, क्लास कराना या सुनना, वहां से पूरा हुआ दूसरा। इधर का इफेक्ट आगे ना चले, आज का इफेक्ट कल ना चले। डिटैचमेंट, द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट, कमलासन। अगला है स्वमान आसन, निरंतर नए नए स्वमान निकालने। जैसे ये मुरली है, इसमें से नए स्वमान ढूंढने हैं, नए स्वमान निकालने हैं। परमात्मा दिल तख्त नशीन हूं, एक जगह आया है, नए स्वमान मुरली से ढूंढ के निकालने हैं। उसको अलग से निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, अलग रखना और सारे दिन भर अंदर ही अंदर अभ्यास करते रहना। बाहर से स्थूल सेवा चालू है, झाड़ू लगाना चालू है, अंदर से स्वमान, मैं इस संसार की सबसे महान आत्मा हूं। बाहर से सेवा चालू है, अंदर से कुछ और चालू है। स्वमान, ऊंचे ऊंचे स्वमानों का अभ्यास, नहीं तो मन नीचे चला जाता है, उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है। कल ही था ना, तुम फिर क्यों कहते हो मन उदास है, दुखी है? मन यूज ही मत करो वर्ड। उलझन। अगला है उमंगासन, नए नए उमंग उत्साह में रहना। उमंग उत्साह एक ऐसी चीज है जिसके जीवन में यह है वो बहुत आगे है। जो बुद्धिमान है वो आगे नहीं है, जिसकी बुद्धि ज्यादा है, जो याद ज्यादा रखता है, इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट लोग उदास हो जाए तो क्या? एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, बहुत बड़ी सर्जन, जिसको एक एक याद रहता था अपने पेशेंट का। पर एक बार जब वो डिप्रेशन में चली गई तो कुछ नहीं कर पाती थी, हाथ कपते थे उसके सर्जरी करते करते, ऐसी डिप्रेशन में चली गई। हमारे पास एक फिजिशियन थे, बहुत टैलेंटेड, इंटेलिजेंट, पर अभी कुछ नहीं कर पाते, खुद ही पेशेंट है डिप्रेशन, बीच बीच में एडमिट होते रहते हॉस्पिटल में। डिप्रेशन ऐसी चीज है कि जिसमें उमंग उत्साह खत्म हो जाता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, वो बुद्धि काम ही नहीं करती। इसके लिए स्वयं स्वयं को उमंग उत्साह में कैसे रखना है, उसकी टेक्निक खुद बनानी है, सीखना है, क्या करूं? तो ये तीन चीजें, पहले चार बताई, फिर तीन, त्याग, वैराग, तपस्या, फिर तीन, दस, और अभी छह। आत्मा के छह गुण। सातवां बता दिया पहले ही, ज्ञान। ग्यारहवां पवित्र आसन, संपूर्ण पवित्रता के आसन में स्थित होना। अपनी पवित्रता की प्रतिज्ञा को रोज रिवाइज करना और दो बार दो लोगों के साथ, एक स्वयं के साथ प्रतिज्ञा करना, एक बाबा के साथ, कि ये जीवन प्यूरिटी के लिए है, इसमें जरा भी इंप्यूरिटी आनी नहीं चाहिए, इमोशनल इंप्यूरिटी कहीं पर कोई नहीं आनी चाहिए, किसी भी संबंध में इंप्यूरिटी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जहां दो व्यक्तियों के बीच इंप्यूरिटी आएगी, और यदि वो एक ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी है, तो दोनों का आपस में प्रेम, रिस्पेक्ट, ईश्वरीय स्नेह कम कम होते जाएगा और रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस होगा जबरदस्त। इसलिए ज्ञान कटार बीच में हो, जब यह ज्ञान कटार निकल जाएगी तो काम कटार चलेगी, या तो इधर या तो उधर। संपूर्ण पवित्रता स्पार्क में एक बुक है प्यूरिटी पर, इतनी मोटी, जिसमें बाबा के संकलित किए हुए महावाक्य है, महेश भाई जो है अकाउंट्स में मधुबन में उनके द्वारा लिखित। हम चाहेंगे कि सभी के पास वो किताब हो, केवल स्पार्क में ही अवेलेबल है और कहीं नहीं, मोटी है, और जिसमें संकलित बाबा के महावाक्यों का संकलन किया हुआ है प्यूरिटी के विषय में, साकार अव्यक्त बोध, और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन है हर एक में। अगला है सुखासन, सुख स्वरूप में स्थित हो जाना। कौन सी चीजें मुझे दुखी बनाए हैं उसका चिंतन और उसको हटा देना। अगला है शांतासन, शांत स्वरूप में मैं क्यों नहीं रह पाता, कौन सी वो बातें हैं, घटनाएं हैं, वस्तुएं हैं, व्यक्ति है, संबंध है, जो आते हैं और मुझे अशांत करके चले जाते हैं और फिर रात में नींद नहीं आती, करवटे। आनंद ने कभी महात्मा बुद्ध से पूछा कि आप एक ही करवट में सोते हो, रात में जिस करवट में देखता हूं सुबह भी उसी करवट में रहते हो, क्या रात में भी जागते हो? क्योंकि रात में तो व्यक्ति इधर का उधर हो जाता है, कहां से कहां चला जाता है पता ही नहीं चलता है, मुंह ऊपर होता है तो कभी नीचे आ जाता है, किधर से किधर घूमते रहता है अनकॉन्शियसली। तो वो कहते हैं कि मेरा मन इतना शांत हो गया है कि मुझे करवट बदलने की जरूरत ही नहीं, करवटे तो वो बदलते हैं जो अशांत है, बेचैन है, अतृप्त है, दुखी है, नींद नहीं आती, इधर से टॉसिंग ऑन द बेड, इधर 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 इधर, ढेर सारी दवाइयां लेते हैं फिर भी नींद नहीं आती है। क्यों ये संतप्त चित्त है, कौन सी चीज है इसको बेचैन किए हुए है? ऊपर से सब कर रहे, सेवाएं कर रहे, सब कर रहे, योग भी कर रहे, तपस्या कर रहे, पर अंदर से बैकग्राउंड में माइंड डिस्टर्ब्ड है। कई सारे भाई बहने आते हैं, वो कहते रात भर नींद नहीं आती, बस देखते रहो, चार बजे जब अमृत वेला होते तब थोड़ी आंख लगती है, और तब योग का समय होता है, योग कराना है करना है, फिर मुरली का समय होता है, मुरली पढ़ानी है या पढ़नी है, सुननी है सुनानी है, क्या करें, दिन में भी नींद नहीं आती, और कितना समय से चालू है, डिस्टर्ब्ड माइंड है अंदर से, दुखी क्यों है, इन्वेस्टिगेट, खोज करनी है, कहां से निकल रही है दुख की गंगोत्री, वो कहां है गंगोत्री इस दुख की गंगा की। तो दुखासन से सुखासन में आना है। अगला है प्रेमासन, क्यों घृणा है किसी से, क्यों किसी से ईर्ष्या है, ईर्ष्या जिससे होगी उसका ज्ञान भी अच्छा नहीं लगेगा, उसका योग भी अच्छा नहीं लगेगा, उसकी धारणा, उसकी सेवा फालतू है, ऐसा भाव रहेगा। उसकी अगर कोई स्तुति करे तो भारीपन आ जाता है। यदि हमारी किसी एक व्यक्ति से ईर्ष्या है और दूसरा कोई आकर उसकी स्तुति करने लगे तो हमें कुछ कुछ होने लगे, अर्थात समझ लेना हमारे अंदर ईर्ष्या है, आग है आग ईर्ष्या। दो व्यक्तियों में ईर्ष्या होती है, दो सेवा केंद्रों में ईर्ष्या हो सकती है, क्यों ईर्ष्या, कि रमेश भाई ने कभी एक अनुभव सुनाया था, बड़ा ही खराब अनुभव है, दो सेवा केंद्र का। शिवरात्रि का प्रोग्राम, एक सेवा केंद्र वाले गवर्नर के पास पहुंचे, सेक्रेटरी से मिले, हमारे प्रोग्राम में जरूर आना। गवर्नर के सेक्रेटरी से कहा, हमारे यहां प्रोग्राम है, ये एड्रेस है ब्रह्मा कुमारी, इसका यहां जरूर आना। फिर दूसरे सेवा केंद्र वाले पहुंचे कि हमारे यहां प्रोग्राम है, आप जरूर आना। तो वो तो कह रहे, हम ऑलरेडी आ रहे हैं आपके यहां। तो उन्होंने कहा आ रहे हो? तो ये यहां आ रहे। तो उसने कहा, अरे वहां मत जाना, वो अच्छे लोग नहीं है, हमारे पास आना। अब उनको क्या पता, उनको तो लगता है सब एक ही है, और हम कह रहे हैं वहां मत जाना उनके पास, हमारे पास आना। तो ये सेवा है या डिससर्विस? क्यों ईर्ष्या? सूरज भाई जी हमेशा कहते हैं, जिससे हम ईर्ष्या करते हैं, अगर किसी की सफलता से ईर्ष्या करते हैं, हम उससे ईर्ष्या नहीं कर रहे, सफलता से ईर्ष्या कर रहे, सफलता दूर जाएगी हमसे। दूसरा व्यक्ति, दूसरा सेवा केंद्र आगे जा रहा है और हमें ईर्ष्या हो रही है, उससे नहीं है, उस सफलता से ईर्ष्या हो रही है, सफलता हमारे पास नहीं आएगी। फिर दूसरों की खुशी में, दूसरों की सेवा में खुश होना महानता की निशानी है। तो प्रेमासन, सबके प्रति प्रेम, आनंदासन, आनंद की अनुभूति। आनंद का कोई अपोजिट शब्द नहीं है, सुख दुख ये सब है, विलोम शब्द नहीं है कोई आनंद का, ना ही कोई पर्यायवाची शब्द भी है, आनंद आनंद है बस, बाकी सब अपोजिट। आनंद अर्थात अति इंद्रिय सुख, ब्लिस, जॉय, रैप्चर, एक्स्टेसी। इसके लिए साधु सन्यासी योगियों ने अपने नाम के आगे आनंद लगाया, सबने, वो आनंद की अवस्था में रहते हैं, मस्त। अगला है शक्तासन, शक्ति स्वरूप में स्थित हो जाना, कमजोर नहीं बनना, इतने कमजोर नहीं बनना कि भीख मांगना पड़े किसी से, प्रेम दो, केयर करो, मुझे अटेंशन दो, मैं बीमार हूं, मेरी तरफ भी तो कोई देखो, तुम बीमार थे तो हम फूल लेके आए थे, एक छोटा सा तो भिजवा तो दो कम से कम, माइक। प्रेम, केयर, अटेंशन, सम्मान, रिस्पेक्ट, प्रेज, स्तुति, हमने अच्छी सेवा की, हमारी स्तुति करो। पावर, मनी, पैसा, पैसे की भीख कभी नहीं मांगना किसी के आगे, जिसकी पास मांगोगे उसके हम गुलाम बन जाते हैं, दास बन जाते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरी हार इसलिए हुई क्योंकि मैंने दुर्योधन का नमक खाया था। इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र जितना हो सके, जो बाहर रहते हैं, सेवा केंद्र पर नहीं है, उनके लिए कह रहे हैं, अपने पैरों पर खुद खड़े होना है। तो ऐसे ये 16 आसन है। पहला बताया ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, त्याग, वैराग, तपस्या, कमलासन, उमंगासन, स्वमानासन, और फिर आत्मा के 6 गुण। इन सभी आसनों का दिनचर्या में अलग अलग समय पर अभ्यास करना है। तो सभी अब अलर्ट होके बैठेंगे, डायरी, पेन, पेंसिल सब कुछ नीचे, चेयर्स रखी। सबसे पहले 5 मिनट, आज सुबह से लेकर जो जो बातें सुनी, चाहे वो योगी के जागरण के विषय में, योगी के निद्रा के विषय में, लड़खड़ाते कदम के विषय में, पिघलते इरादों के विषय में, स्पिरिचुअल एक्टिविटी जो सुबह हुई थी और जो अनुभव हुआ था उसके विषय में, अभी अभी कैसे परिस्थितियों में ज्ञान को अप्लाई करना है, योग को अप्लाई करना है उसके विषय में, और अभी जो ये कुछ आसन सुने, तो सभी अगले 5 मिनट बैठकर आंखें बंद करेंगे और क्या क्या याद आता है उसको याद करने की कोशिश करेंगे, मन ही मन में आज की इस भट्टी में अपने जीवन को देखेंगे और ज्ञान की ये सारी बातें इनको याद करेंगे। सभी बैठ जाएंगे बिल्कुल मौन में।